ARPA Radio Exclusive Interviews।
आप सुन रहे हैं रेडियो अर्पा।
अर्पा रेडियो में आज हमारे साथ मौजूद हैं छत्तीसगढ़ योग आयोग के सदस्य और बिलासपुर के पार्षद श्री रविंद्र सिंह जी। स्वागत करते हैं हम आपका अर्पा रेडियो में।
नमस्कार
रविंद्र जी। योग आयोग छत्तीसगढ़ में और देश में कब से चल रहा है और इसका क्या काम चल रहा है, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को जानकारी दीजिए।
केंद्र सरकार के द्वारा आयुष विभाग है, आयुष विभाग के ही द्वारा योग का कार्यक्रम निर्धारित होता है केंद्रीय लेवल पे। छत्तीसगढ़ में हमारे इसका अलग से योग आयोग का स्थापना किया गया है, जिसकी दूसरी पारी में हम लोगों की नियुक्ति हुई।
अच्छा,
काफी दिन नहीं हुए हैं, मगर हम लोगों ने जब से शपथ लिया है तब से योग को दूर अंचल ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने का हम प्रयास कर रहे हैं। अभी वर्तमान में सभी संभागों का योग प्रशिक्षण कार्यक्रम रायपुर में पूर्व में कराया गया, चाहे वो बिलासपुर का मामला हो, चाहे बस्तर का हो, चाहे दुर्ग का हो। अब इसके बाद जो अगली कड़ी है, जिला स्तर पे हम पुनः लोगों को प्रशिक्षण देंगे, उसके बाद ब्लॉक स्तर के लोगों को प्रशिक्षण देंगे। इस तरीके से हम कहीं ना कहीं एक अंतिम छोर तक योग को पहुंचा के लोगों को जागृत का जहां कर रहे हैं, वही उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए हम सतत प्रयासरत हैं, लगातार प्रचार प्रसार के माध्यम से। और उसके साथ साथ हम एक योग प्रशिक्षण केंद्र प्रत्येक जिले में स्थापित कर रहे हैं, जैसे बिलासपुर में आपका गायत्री मंदिर में ही योग प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गया है, जहाँ निःशुल्क महिलाएं पुरुष बच्चे जाकर योग सीखते हैं और स्वास्थ्य लाभ लेते हैं। किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है, जो ट्रेनर है और जो व्यवस्था है वो छत्तीसगढ़ योग आयोग के द्वारा है।
अच्छा, जैसा आपने कहा बहुत समय नहीं हुआ है छत्तीसगढ़ में योग आयोग का निर्माण हुए और इसके सदस्य के रूप में आप लोग मनोनीत किए गए हैं, तो इसके पहले की जो स्थिति थी जब आपने ज्वाइन किया है और उसके बाद जो आप लोग पिछले एक साल डेढ़ साल से काम कर रहे हैं, तो उसमें आपको क्या लगता है कितनी जागरूकता आई है हमारे प्रदेश में?
पहले के जो अध्यक्ष थे वो भी बिलासपुर से थे, हमारे संजय अग्रवाल जी मेंबर थी, हमारे ब्रह्म कुमारी की मंजू जी थी और अन्य लोग भी थे। तो लोगों ने अपनी तरफ से जो प्रयास करना था इन लोगों ने किया, लेकिन उसको आगे बढ़ाते हुए उस समय एक प्रचार प्रसार तक ही सीमित था और 21 तारीख को योग दिवस वगैरह मनाते थे हम लोग। अभी तो योग दिवस तो अनिवार्य रूप से राज्य केंद्र सरकार के द्वारा मनाया जाता है। हम लोगों ने सबसे अच्छा काम जो किया है कि एक ब्लॉक से लेके जिले से लेके प्रदेश स्तर पे प्रशिक्षण का कार्यक्रम हम लोग लगातार कर रहे हैं। एक दूसरा ये है कि उस समय कहीं पर भी योग प्रशिक्षण केंद्र निःशुल्क नहीं खोला गया, जो अभी प्रदेश में करीब 40 के संख्या में हम अभी तक खोल चुके हैं।
अच्छा।
इसको आगे और लगातार बढ़ा रहे हैं। हम लोगों का एम है कि कम से कम 100 सेंटर हम प्रदेश में विभिन्न स्थानों में खोले, ताकि लोग निःशुल्क योग का लाभ उठा पाए, विभिन्न क्षेत्र को ले, महिलाएं बुजुर्ग बच्चे सभी इसका लाभ ले पाए, किसी प्रकार का शुल्क बिना सभी व्यवस्था हम दे रहे हैं।
तो जैसे योग से जो लोगों को फायदा मिल रहा है या आप लोग जो इतने सारे सेंटर्स खोल रहे हैं, उनमें प्रशिक्षक इतनी संख्या में कहाँ से आप लोगों को मिल रहे हैं, और क्या जैसे अलग अलग तरह के योग ब्रह्म कुमारी हैं या पतंजलि योग सेंटर्स हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे पर्सनल व्यक्तिगत लोग योग सेंटर्स चलाते हैं, लेकिन आप लोग ये जो एक तरह से सरकारी और निःशुल्क व्यवस्था कर रहे हैं, इसके लिए ट्रेनर्स कहाँ से आप लोगों को उपलब्ध हो रहे हैं?
देखिए, सभी विश्वविद्यालयों में अब केंद्र के साथ साथ राज्य स्तर में भी योग की शिक्षा दी जाने लगी है, चाहे वो महाविद्यालय की स्तर हो चाहे विश्वविद्यालय की।
यहाँ सर्टिफिकेट्स भी हैं और डिग्री कोर्सेज भी शुरू हो चुके हैं।
हमारे प्रदेश में भी सभी जगह पे है, बिलासपुर में है सुंदरलाल विश्वविद्यालय, अटल विश्वविद्यालय है, बहुत सारे महाविद्यालय है जहाँ डिप्लोमा डिग्री धारी बच्चे निकल रहे हैं। और उसके साथ साथ केवल डिप्लोमा डिग्री ही होना अनिवार्यता नहीं हुआ है, उसके साथ उनके प्रतिभा को निखारने के लिए जैसे मैंने बताया कि योग आयोग के द्वारा इन लोगों को 7 दिवसीय प्रशिक्षण भी दिया जाता है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ये योग के जो मास्टर ट्रेनर है वो उसको हम लोग कहीं ना कहीं योग प्रशिक्षण केंद्र में उनकी कुशलता को देखते हुए प्राथमिकता देते हैं, वो फिर आम जनमानस को योग की विभिन्न गतिविधियों से परिचित कराते हैं।
तो एक तरह से आप लोग योग के माध्यम से इन लोगों को रोजगार भी उपलब्ध करवा रहे हैं।
निश्चित ही, चाहे आयुष विभाग हो चाहे छत्तीसगढ़ योग आयोग हो, साथ हो, लगातार योग से जुड़े लोगों को रोजगार देने के प्रयास कर रहे हैं। हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय भूपेश बघेल जी और हमारे समाज कल्याण के मंत्री है अनिल अघड़िया जी, आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा जी, सब ने लगातार प्रयास किया है। अभी स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत भी योग से जुड़े लोगों को रोजगार दिया गया। आयुर्वेद जो क्षेत्र है वहाँ पर भी लोगों को रोजगार दिया गया, ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ के स्कूल के बच्चे हैं, महिलाएं पुरुष हैं, उनको योग की शिक्षा दी जा सके, उसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। आप प्रत्येक छत्तीसगढ़ के जितने ब्लॉक हैं उसमें आप पाएंगे, ब्लॉक में दो दो तीन तीन छह छह स्थान जहाँ पर चयन करके वहाँ पर स्थायी रूप में उनको रोजगार दिया गया है और वो लगातार काम कर रहे हैं।
तो रोजगार के साथ साथ एक जागरूकता लाने की भी जरूरत है कि हर केंद्र में उस क्षेत्र से जुड़े हुए स्त्री पुरुष बच्चे सब पहुंचे और सारे लोग उस चीज का फायदा उठाएं, तो वो आप लोग कितने परसेंट अचीव कर चुके हैं?
देखिए, लगातार कार्यक्रमों के माध्यम से तो प्रचार प्रसार चल ही रहा है। इसका हम लोगों ने बुक भी प्रकाशित करवाया है युवा के द्वारा, और समय समय पे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया, उसके माध्यम से, कार्यक्रमों के माध्यम से, पुस्तक के माध्यम से और हैंडबिल वगैरह प्रिंट कराकर लोगों को पहुंचा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और इसी कड़ी में जैसे मैंने आपको बताया कि जो योग से जुड़े हैं उन टीचरों का सम्मान करना, प्रशिक्षण देना, प्रतियोगिता कराना इनके बीच में, ये ब्लॉक स्तर से प्रदेश स्तर तक विभिन्न स्थानों में समय समय पर हम लोग आयोजित करते रहते हैं।
तो अब हर केंद्र में लोगों के पहुंचने की संख्या धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है आप लोगों को?
बिल्कुल, संख्या में अधिक बढ़ोतरी हुई है और कोरोना कार्यकाल से लोगों में और ज्यादा जागरूकता देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं हम अपने साथियों को, परिवार के सदस्यों को, तो उसके बाद से काफी जागरूकता आई है। युवा पीढ़ी भी अब आगे बढ़ के योग सीखना चाहते हैं, परिवार के सभी सदस्य, महिलाएं, बुजुर्ग योग सेंटर में अधिक से अधिक संख्या में दिखाई दे रहे हैं और उनको स्वास्थ्य लाभ भी मिल रहा है, चाहे वो पेट का प्रॉब्लम हो, कमर का हो, घुटने का हो, और बहुत सारे जो तकलीफ है लगातार योग करने से उन लोगों को फायदा दिखाई दे रहा है, इसीलिए योग के दम लगातार जुड़ते जा रहे हैं।
अच्छा, बहुत से लोग अपने घर में योग करते हैं, कुछ आधा सीखे हुए, कुछ नेट वगैरह से देख करके, और ये जो एक हर जगह पे सामूहिक आयोजन हो रहा है हर रोज का, जिसमें आपस में मिल रहे हैं, एक दूसरे को गलतियां भी शायद बताते हों और सुधारते हों, तो उसमें आपको क्या फर्क लग रहा है?
कोई भी शिक्षा हो, चाहे योग की शिक्षा हो या अन्य क्षेत्र में, बिना गुरु का सही ज्ञान प्राप्त नहीं होता। यदि घर में योग करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन यदि सही ढंग से नहीं करते हैं तो उसका गलत असर भी हो सकता है। इसलिए मैं सजेशन दूंगा और निवेदन करूंगा साथियों से कि वो प्रशिक्षण केंद्र में जाए और एक जो प्रशिक्षित व्यक्ति है उनसे ही सीखे, ताकि जो उनका लक्ष्य है वो पूरा हो सके।
क्योंकि बहुत लोगों के दिमाग में ये होता है कि योग कर रहे हैं हम तो जैसी भी चीजें उनको पता है कि हमको हर जोड़ को हिलाना है, क्या करना है, लेकिन किस बीमारी के लिए कौन सा योग नहीं करना चाहिए और क्या किस तरह के आसन नहीं करने चाहिए, वो सारी जानकारी होना भी बहुत जरूरी होता होगा।
बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, इसीलिए मैंने कहा मास्टर ट्रेनर जो होते हैं उनके माध्यम से उनके मार्गदर्शन भी यदि करते हैं, वो सभी चीज के ज्ञाता होते हैं, वो जानकारी देते हैं कि क्या चीज करने से कौन से रोग में फायदा होगा। वही यदि कोई रोग आपको है तो ये कठिन योग ना करें, उस सब चीज की व्यवस्थित जानकारी देते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ घर में योग करे वो अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं गुरु के मार्गदर्शन में करे तो उचित स्थान में पहुंचेंगे और उनका जो कार्य है वो सार्थक।
योग का कुछ खास प्रकार होते हैं, आसन होते हैं, इसके अलावा यंग जनरेशन जो है वो योग की जगह कुछ दूसरी तरह से एक्सरसाइज करना पसंद करती है, जुम्बा और इस तरह की चीजें, तो क्या उन चीजों को भी आपके योग आयोग ने मान्यता दी हुई है, उस तरह के भी प्रशिक्षक हैं या सिंपली
योग आयोग में हम लोग चाहे जिम का हो चाहे जुम्बा का ले ली, इसको हम लोग योग के श्रेणी में नहीं रखते
जी।
योग हमारे आदि गुरु इस देवों के देव शिव जी और कहीं ना कहीं हमारे महापुरुषों के द्वारा और साधु संतों के द्वारा दिया हुआ पद्धति है,
बिल्कुल
उसी पद्धति को अपनाते हुए हम लोग वही आसन को अपनाते हुए हम लोग योग करते हैं और कराते हैं। उसमें जिम का या जुम्बा का कोई स्थान नहीं है, लेकिन आज के आधुनिक युग की पीढ़ी के बच्चे हैं, उनको तत्कालिक लाभ के लिए या मनोरंजन के लिए करना चाहते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन योग करना है तो उसके एक विधि है, उस विधि से
बिल्कुल
लाभ मिल सकता
है। जी हाँ, गुरु के सानिध्य में रहकर और सही तरीके से करें उन चीजों को, भले ही वो किसी भी चीज को अपनाए, ब्रह्म कुमारी इसके साथ जाएं या पतंजलि योग में जाएं या किसी प्राइवेट योग प्रशिक्षक के पास जाएं और या योग आयोग द्वारा आयोजित अलग अलग जो सेंटर्स बनाए जा रहे हैं हर ब्लॉक में वहां पर जाएं, लेकिन सही तरीके से योग करें। रविंद्र जी, जैसा 21 जून हर साल मनाया जाता है योग दिवस के रूप में, लोग उस समय अचानक जागृत हो जाते हैं और थोड़े दिन करते हैं, हफ्ता 10 दिन करते हैं और उसके बाद फिर ढीले पड़ जाते हैं, तो योग की नियमितता के बारे में आप
देखिए, कोई भी पर्व हो उस पर्व को मनाने के लिए जैसे हम दीपावली दशहरा मनाते हैं उसी तरीके से योग पर्व के रूप में हम 21 जून को चुने हैं योग दिवस के लिए। उस दिन भव्य रूप में योग करके प्रचार प्रसार करके लोग योग दिवस को खुशी के साथ मनाते हैं, सभी वर्ग के लोग, सभी समाज के लोग। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब योग को केवल योग दिवस के दिन मनाए, अब आप देख रहे हैं कि योग को शहरी क्षेत्रों साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों का जागृति देखने को आप लोगों को मिल रही है। वही आप देखिए कि केवल 21 तारीख नहीं, लगातार जैसे मैंने बताया है कि शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण अंचलों में भी अब योग प्रशिक्षण केंद्र खुल गया है, तो स्कूल के बच्चे हों चाहे महिला समूह हो चाहे सरपंच के माध्यम से ग्रामवासी हो, लगातार योग का लाभ ले रहे हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ते जा रही है जो योग करने वाले हैं। जैसे मैंने बताया कोरोना पार काल से तो लगभग ऐसी संख्या ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो लगातार बढ़ रही है, और इसको संकल्पित करके योग को करना चाहिए, दिनचर्या में प्रत्येक दिन योग को शामिल करना चाहिए। उसका कारण है आदमी आज भाग दौड़ की जिंदगी है, कहीं हम प्रतिस्पर्धा में किसी के सामने जाते हैं तो शारीरिक मानसिक रूप में स्वस्थ रहना आवश्यक होता है, और वो चीज की पूर्ति आप नियमित रूप में यदि 1 घंटा योग करते हैं तो आप पाएंगे शारीरिक मानसिक तौर पर आप स्वस्थ हैं, तो किसी भी चीज को
करने
के लिए सक्षम होते
हैं, आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी।
बिल्कुल बिल्कुल, तो इसलिए आदमी को दिनचर्या में योग को शामिल करना चाहिए।
आप अर्पा रेडियो के माध्यम से हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने जीवन में स्वस्थ रहने के लिए योग को अपनाएं, प्रत्येक दिन दिनचर्या में योग को शामिल करें, आप भी स्वस्थ रहें, आपके परिवार और समाज भी स्वस्थ रहे, और आप स्वस्थ रहेंगे तो आपके राज्य और देश का विकास होगा, स्वस्थ समाज का विकास होगा। जय हिंद, जय भारत।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका रविंद्र जी।
धन्यवाद।
अर्पा रेडियो एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज।
आप सुन रहे हैं रेडियो अर्पा।